एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और चर्चित आयुष उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं, पॉल मुरे का द बी स्टिंग।
हाँ, पॉल मुरे, स्किपी राइस और द मार्क इन द वॉइड वाले, उनका वो डार्क ह्यूमर और समाज पर तीखी नज़र कमाल की है।
बिल्कुल, और द बी स्टिंग जो 2023 में आया और बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ, वो इसी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, शायद और भी गहराई से।
सही कहा, इसे सिर्फ एक परिवार की कहानी कहना वो शायद पूरा सच नहीं होगा। ये एक तरह से आइलैंड का, खासकर 2008 की मंदी के बाद के माहौल का आईना है।
हाँ, कैसे एक बाहरी संकट जैसे आर्थिक मंदी एक परिवार के अंदर दबे राज उनकी अंदरूनी कमजोरियों को उजागर कर देता है।
बिल्कुल, मरी ने बांस परिवार के जरिए यही दिखाया है, एक छोटे से शहर में कैसे सब बिखर रहा है। और ये दुखद कॉमेडी है, मतलब हंसी भी आती है और दिल भी दुखता है।
और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि क्या हम अपने अतीत के कैदी हैं? हमारे फैसले, हमारी खामोशियां, क्या वो हमारा भविष्य तय कर देती हैं?
नियति और चुनाव का सवाल, बांस परिवार की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए मिलते हैं इनसे, आज ये किस हाल में है।
हाँ, बताइए जरा बांस परिवार के बारे में।
तो परिवार के मुखिया हैं डिकी बांस। पहले उनकी फॉक्सवैगन डीलरशिप थी, अच्छी चलती थी। अब सब बंद है, कर्ज में डूबे हैं बिल्कुल।
दिशाहीन से
और उनकी पत्नी
इमेल्डा,
इमेल्डा, जो कभी शहर की ब्यूटी क्वीन मानी जाती थी, वो अब ऑनलाइन पुराना सामान बेचकर घर चला रही हैं। वो पुरानी शानो शौकत जैसे अब सिर्फ यादों में हैं। घर में एक अजीब सी चुप्पी है, लगता है जैसे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बस इल्ज़ाम लगाते हैं मनी मन।
और बच्चे?
बच्चे इस माहौल में कैसे हैं? उनकी बेटी है ख्यास, पढ़ाई में अच्छी थी, होनहार, पर अब कॉलेज छोड़ दिया, काफ़ी शराब पीने लगी है। वो घर के तनाव को शायद सबसे ज़्यादा महसूस करती है और उसका बर्ताव उसी का नतीजा है।
और छोटा बेटा पीजे?
पीजे 12 साल का, बहुत ही संवेदनशील बच्चा है, सहमा हुआ सा रहता है। वो देख रहा है घर में सब ठीक नहीं है, पर समझ नहीं पा रहा क्यों, और वो चुपचाप पैसे जमा कर रहा है।
पैसे किस लिए?
यहां से भाग जाने के लिए। सोचिए जरा, एक ही छत के नीचे 4 लोग, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में अकेले। प्यार शायद अब भी हो, पर वो जोड़ने वाली कड़ी, वो बातचीत, वो खत्म हो चुकी है।
उफ, ये तो सच में मुश्किल हालात हैं। चलिए डिकी से शुरू करते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं वो क्या कर रहे होते हैं?
डिकी, हाँ, वो ज्यादातर वक्त घर के पीछे जंगल में होते हैं। वहां वो एक बंकर बना रहे हैं, सर्वाइवलिस्ट बंकर, बड़ी मेहनत से।
बंकर मतलब?
हाँ, जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो तो उसमें छिप सकें, पर असल में ये शायद उनकी अपनी हालत का प्रतीक है। दुनिया से छिपने की एक नाकाम कोशिश, उस खतरे से बचने की कोशिश जो असल में बाहर नहीं, अंदर है, उनके रिश्तों में, उनके अतीत में। वो जैसे सुन्न हो गए हैं।
लेकिन क्या ये सिर्फ बिजनेस डूबने का नतीजा है, या ये जो हार मान लेने वाली हालत है ये कहीं ज्यादा गहरी है? मुझे लगता है मरे इशारा कर रहे हैं कि डिकी का राज कुछ और है।
बिल्कुल सही, ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है। डिकी की कहानी परत दर परत खुलती है और हमें पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी एक तरह से डर और छुपे हुए राजों का बोझ ढो रही है।
कैसा राज?
उनके पिता काफी दबंग थे, फिर उनका बड़ा भाई था फ्रैंक, जो बहुत पॉपुलर था। डिकी हमेशा उनकी छाया में रहे, लेकिन सबसे बड़ा बोझ है एक और राज, विक्टर नाम के एक लड़के से उनका प्यार।
ओह अच्छा।
हाँ, जिसे उन्होंने सबसे छुपाया, और फिर एक रात उनके भाई फ्रैंक ने उन्हें और विक्टर को साथ देख लिया, और उसी रात एक कार एक्सीडेंट में फ्रैंक की मौत हो गई।
ओह, तो डिकी को लगता है कि वो जिम्मेदार हैं।
हाँ,
उन्हें लगता है कि अगर फ्रैंक ने उन्हें ना देखा होता तो वो शायद जिंदा होता। ये अपराध बोध, अपनी असलियत को छुपाने का दर्द, ये उनके साथ हमेशा रहा, और इसी का जहर धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल गया।
ये तो बहुत ही भारी है।
कैसे समाज का डर, शर्मिंदगी इंसान को अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर कर सकती है, और उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, पूरा परिवार भुगतता है। अच्छा, और इमेल्डा, वो शुरू में थोड़ी कड़वी और सतही लगती हैं, है ना?
हाँ, इमेल्डा शुरू में लगता है कि उन्हें बस अपनी खोई हुई खूबसूरती, अपने रुतबे की पड़ी है। डिकी की नाकामी से वो बहुत चिड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी कहानी भी उतनी ही उलझी हुई है।
उनके अतीत में क्या है?
जब हम उनके अतीत में जाते हैं तो एक अलग इमेल्डा मिलती है, जवान, जिंदा दिल, एक होटल में काम करती थी, सपने थे उसके।
और वहीं फ्रैंक बार्न्स से मिली, डिकी के भाई से।
हाँ, फ्रैंक बहुत आकर्षक था, जिंदगी से भरपूर। इमेल्डा को उसे बेपनाह मोहब्बत हो गई, उसे लगा यही है उसका सच्चा प्यार, उसकी दुनिया।
लेकिन फ्रैंक की मौत हो गई।
हाँ, अचानक एक हादसे में इमेल्डा पूरी तरह टूट गई, और उस दुख में, उस हताशा में उसने फ्रैंक के छोटे भाई डिकी से शादी कर ली।
तो उन्होंने अपने पूरा जीवन एक तरह से एक मृत व्यक्ति की याद में गुजार दिया।
बिल्कुल, एक होए हुए प्यार की छाया में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो उपन्यास के अंत में पता चलती है, जब उन्हें उस सच्चे प्यार की असलियत मालूम होती है। ये जानना कि जिस कहानी पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बनाई वो शायद झूठ थी, ये उनके लिए किसी भूचाल से कम नहीं होता।
कितना कितना दुखद है एक याद के सहारे जीना और फिर पता चले कि वो याद भी वैसी नहीं थी। और इन सब के बीच उनकी बेटी कैस, आपने कहा वो घर के तनाव का बैरोमीटर है, उसकी कहानी कहने का तरीका भी खास है।
उलझन को दिखाता है,
और वो है कैस।
तेज है, मजाकिया है, पर साथ ही खुद को नुकसान पहुंचाने वाली राह पर है। वो माँ बाप के बीच के तनाव को सोख लेती है जैसे, और फिर उसे शराब या अपनी दोस्त एलन के साथ उस अजीब से रिश्ते में बाहर निकालती है।
तो वो भी सच ढूंढ रही है। क्या द बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक, उसकी कहानी से जुड़ता है?
बिल्कुल, कैस जानना चाहती है कि घर में चल क्या रहा है, माँ बाप के राज क्या है, शायद ये समझने के लिए कि वो लोग इस हाल में पहुंचे कैसे। वो पुराने खत, तस्वीरें देखती है और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचती है, पर वो सच उसकी मासूमियत छिनहसता है।
और मधुमक्खी का डंक,
हाँ वो टाइटल, एक तो उसके बचपन की घटना है जब मधुमक्खी ने काटा था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन दबे हुए राजों के जहरीले डंक का प्रतीक है। जब वो राज खुलते हैं तो अचानक बहुत दर्द देते हैं, सब कुछ बिखेर देते हैं। कैस की कहानी मासूमियत के खो जाने की कहानी है, दुखद।
और सबसे छोटा सदस्य पीजे, उसकी आंखों से ये सब देखना कैसा है?
पीजे, उसका नजरिया शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ता है। वो मासूम है, वो बस देख रहा है। घर में उदासी है, स्कूल में उसे तंग किया जाता है, मौसम अजीब हो रहा है, वो उन सबसे घिरा हुआ महसूस करता है। वो बस चाहता है सब ठीक हो जाए, परिवार फिर से खुश हो जाए।
और जब उसे लगता है कुछ नहीं हो सकता तो वो भागने की सोचता है।
हाँ, उसकी ये कोशिशें, उसकी वो मासूम समझ, वो बड़ों की बेबसी को और उभार देती हैं, दिखाती हैं कि कैसे इन संकटों का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा होता है, अक्सर अनदेखे तरीके से।
उपन्यास की बनावट भी खास है, ये सीधा नहीं चलता, अतीत और वर्तमान में कूदता रहता है। इसका क्या असर होता है?
ये जो नॉन क्रोनोलॉजिकल तरीका है, ये तनाव को बहुत बढ़ा देता है। मरे हमें पहले आज की बिखरी हुई तस्वीर दिखाते हैं, कर्जा, बंकर, शराब, और फिर वो हमें अतीत में ले जाकर दिखाते हैं कि ये सब हुआ क्यों।
तो पाठक ज्यादा जानता है किरदारों से।
हाँ, काफी हद तक, खासकर डिक्की और इमेल्डा के राजों के बारे में। इससे एक अजीब सी नाटकीय विडंबना पैदा होती है। हम जानते हैं कि क्या हो सकता है, और हम उन्हें अनजाने में उसी तरफ बढ़ते देखते हैं। ये डर पैदा करता है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है, वर्तमान संकट से शुरू होकर?
हाँ, वर्तमान से शुरू होती है। एक बिग माइक नाम का आदमी भी है, एक लोकल गुंडा जिससे डिकी ने पैसे लिए हैं। वो धमकियां देता है जिससे परिवार पर खतरा और बढ़ जाता है। फिर हम इमेल्डा के अतीत में जाते हैं, फ्रैंक से उसका प्यार, उसकी मौत, डिकी से शादी। ये हिस्सा बहुत रोमांटिक सा लगता है।
और फिर आता है डिकी का अतीत जो कहानी पलट देता है।
बिल्कुल, जब डिक्की की नज़र से अतीत दोबारा सामने आता है, वो चौंकाने वाला है। पिता का जुल्म, विक्टर के साथ उसका रिश्ता, और फ्रैंक की मौत की रात की सच्चाई कि फ्रैंक ने उन्हें देख लिया था, गुस्से में भागा और कार टकरा गई। ये जानना कि डिक्की का राज ही शायद भाई की मौत की वजह बना, ये पाठक को हिला देता है।
इसके बाद जब कहानी वापस आज में आती होगी तब तो तनाव बहुत बढ़ गया होगा।
हाँ, रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। अब पाठक राज जानता है, कैश सच के बहुत करीब है, पीजे भागने वाला है, बिग माइक का खतरा बढ़ रहा है, इमेल्डा अतीत के एक ऐसे आदमी से मिलती है जो बार्न्स के राज जानता है। सब अनजाने में सच्चाई से टकराने वाले हैं।
और फिर उपन्यास का अंत जो कहते हैं काफी दुखद है।
आखिरी हिस्सा, वो एक ही दिन में होता है, और चारों किरदारों की कहानियां आपस में कटती हैं बहुत तेजी से। गलतफहमियां, बुरी किस्मत, बुरे संयोग, सबका एक भयानक संगम है। पीजे बाढ़ की चेतावनी को गलत समझकर भागता है। कैस माँ बाप से भिड़ जाती है, जिससे डिगी का सच और फ्रैंक की मौत का सच खुल जाता है। इमेल्डा ये जानकर टूट जाती है कि उसकी शादी झूठ पर बनी थी। और इसी उथल पुथल में एक पड़ोसी, एक बंदूक, बिग माइक के आदमी, इन सब के वजह से एक भयानक हादसा हो जाता है। अंत थोड़ा खुला है पर गहरा दुख छोड़ जाता है, जैसे नियति ने अपना खेल खेल दिया।
उफ, सुनकर ही सिहरन होती है। तो इस पूरी कहानी के जरिए मरे किन बड़े मुद्दों को छूते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहले तो राजों की ताकत, उनका विनाशकारी असर।
बिल्कुल, यहां सबसे दुखद बात यह है कि बार्न्स परिवार प्यार की कमी से नहीं टूटता, बल्कि सच की कमी से टूटता है। डिकी का वो सालों पुराना राज, वो एक जहर की तरह फैलता है। ये उपन्यास दिखाता है कि राज कैसे रिश्तों को खोखला कर देते हैं।
और वो भाग्य बनाम मर्जी का सवाल, क्या किरदार मजबूर थे? ये लगता है कि सब कुछ पहले से तय था, एक त्रासदी की तरह। लेकिन अगर आप देखें तो हर कदम पर किरदारों ने छोटे छोटे फैसले लिए, झूठ बोला, चुप रहे, सच का सामना नहीं किया, और वही फैसले उन्हें उस अंत तक ले गए। तो शायद भाग्य हमारे ही डरे हुए चुनावों का नतीजा है।
अतीत भी पीछा नहीं छोड़ता।
हाँ, अतीत का भूत। डिक्की उस रात से उभर नहीं पाता, इमेल्डा उस खोए प्यार से, और बड़े लेवल पर देखें तो 2008 का संकट भी एक अतीत है जिससे आयरलैंड जूझ रहा है, जैसे बार्न्स परिवार अपने पुराने भावनात्मक कर्ज से, और बातचीत की कमी।
हाँ, ये खामोशी की त्रासदी है। वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, बस सोचते हैं या चिल्लाते हैं, और जब बात नहीं होती तो गलतफहमियां बढ़ती हैं, शक बढ़ता है।
और आखिर में पहचान का सवाल, खासकर डिक्की की पहचान, उसका अपनी असलियत को समाज के डर से छुपाना, वही शायद पहली कड़ी थी इस पूरी तबाही की। ये दिखाता है कि खुद को नकारने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
मरे के लिखने की शैली भी कमाल की है। अलग अलग आवाजें, खासकर कैस की वो तेज रफ्तार शैली, कहानी पर क्या असर डालती है।
मरिक की ये विविधता ही उपन्यास की जान है। बात सिर्फ क्या कहा गया है उसमें नहीं, कैसे कहा गया है उसमें भी है। हर किरदार की अपनी आवाज है। इमेल्डा का नजरिया ज्यादा काव्यात्मक है, डिकी का सीधा, थोड़ा झिझकता हुआ, पीजे का मासूम, और केस, उसकी शैली आज के युवाओं की बेचैनी, जानकारी के बोझ और अंदरूनी तूफान को पकड़ती है। अंत में शैली बदलती है जो तनाव को और बढ़ा देती है।
और प्रतीक,
मधुमक्खी के डंक के अलावा
और क्या है?
कई हैं, वो डंक तो है ही, अचानक दर्द, फैलता जहर, डिकी का बंकर, उसका पलायन, उसकी नाकामी, दबा हुआ अतीत, एक कब्र जैसा। कारें जो कभी तरक्की का प्रतीक थीं, डीलरशिप, वही मौत का सबब बनती हैं। फ्रैंक का एक्सीडेंट, अंत का सीन, और नदी जहां इमेल्डा और फ्रैंक मिले थे, वो यादों, वक्त के बहाव और किस्मत की धाराओं का प्रतीक है।
तो कुल मिलाकर पाठक पर कैसा असर छोड़ती है ये किताब? आपने कहा हंसी भी है, दुख भी।
यह आपको झकझोर देती है। आप किरदारों की हरकतों पर हंसते हैं, उनकी छोटी खुशियों में मुस्कुराते हैं, पर फिर उनके दुख को देखकर दिल भारी हो जाता है। आप उनसे जुड़ जाते हैं उनकी कमियों के बाद भी। आप मनी मन चिल्लाना चाहते हैं, बात कर लो, सच बोल दो, पर आप उन्हें चूकते हुए देखते हैं।
और अंत एक उदासी छोड़ जाता है। शायद हमें आम जिंदगियों को, बंद दरवाजों के पीछे की कहानियों को अलग तरह से देखने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या माफी मिल सकती है, क्या अतीत से भागा जा सकता है, क्या जख्म भरते हैं। ये दिखाता है कि छोटे छोटे फैसलों का वजन कितना ज्यादा हो सकता है।
तो अंत में अगर हमें इस उपन्यास का सार एक दो वाक्यों में कहना हो तो वो क्या होगा?
मेरे ख्याल से ये अनकहे सच की भयानक कीमत के बारे में है, और ये कि हमारे चुनाव अक्सर हमें एक खास दिशा में धकेल देते हैं जिससे बचना मुश्किल होता है। खामोशी कैसे रिश्तों को मार सकती है,
और ये भी कि कैसे हमारी निजी कहानियां और समाज के बड़े दबाव मिलकर हमारी जिंदगियों को बनाते हैं, अक्सर दुखद तरीकों से। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।